ओम शांति। बाबा ने हमें कई बार कहा है, बच्चे विघ्न तो अंत तक आएंगे, विघ्नों का काम है आना और आप विघ्न विनाशक बच्चों का काम है उनको मिटा देना। आइए आज इसी विषय पर क्लास सुनेंगे, विघ्न विनाशक स्थिति क्या होती है। हमारे बीच उपस्थित है मधुबन के डॉक्टर सविता बहन जी, हम सभी आपका बहुत तहे दिल से सभा में स्वागत करते हैं। स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। आप बचपन से ही ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं। 1989 से आपने अपनी जीवन ईश्वरी सेवा में समर्पित कर दी। 10 साल तक ग्लोबल हॉस्पिटल में आपने सेवाएं दी और उसके पश्चात आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी के अंग संग रहने का परम सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ। वर्तमान समय आप मधुबन में सेवाएं दे रहे हैं। विमेन्स विंग के आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो आइए क्लास सुनेंगे, विघ्न विनाशक स्थिति, मधुबन के डॉक्टर सविता बहन जी।
ओम शांति। अभी हम सब गीत सुन रहे थे, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेली। तो वास्तव में ये संगम युग हम ब्राह्मण बच्चों के लिए मौजों का युग है, खुशियों का युग है। हम इस विश्व की सबसे खुश नसीब आत्माएं हैं जिन्होंने स्वयं भाग्य विधाता बाप को पा लिया है। तो अगर इस खुशी में, इस नशे में रहते हैं बाबा के प्यार में, तो मैं समझती हूं कि कोई विघ्न लगेगा नहीं। लेकिन फिर भी, क्योंकि कलयुग भी है साथ में, तो बाबा कहता है ये कलयुग तो कांटों का जंगल है, या ये संसार समस्याओं का सागर है। सागर में लहरें नहीं उठे ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ब्राह्मण बनते ही, जैसे ही धारणा का हम पाठ पढ़ते हैं और उनको जीवन में लाने की कोशिश करते हैं, वहीं से ही पेपर शुरू हो जाते हैं, वहीं से ही विघ्नों का आह्वान शुरू हो जाता है। अगर दोनों ज्ञान में चलते हैं परिवार में, तब तो शायद एक दो के सहयोगी बनते हैं, तीव्र पुरुषार्थी बनने में मदद मिलती है। लेकिन अगर एक ज्ञान में चला, पति ज्ञान में चला, पत्नी नहीं चली, या पत्नी ज्ञान में चली, पति नहीं चले, तो हमें मालूम है कि फिर कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो बाबा के बच्चे बने हैं, माना हम बाप, टीचर, सतगुरु, ये तीन संबंधों से बाबा से वर्षा लेते हैं। बाबा के द्वारा 21 जन्मों की हमें प्रालब्ध मिलती है, टीचर हमें ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं, गुणों से श्रृंगार करते हैं, और सद्गुरु हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। तो बाबा तो हमें चाहते हैं कि हम तीव्र पुरुषार्थी बन के जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, संपन्न बने, संपूर्ण बने। लेकिन ये बातें जब सामने आने लगती हैं, तो हम तीव्र पुरुषार्थी के बजाय पहले साधारण पुरुषार्थी की लाइन में आने लगते हैं, और फिर धीरे धीरे अगर वो विघ्न हम पार नहीं कर पाते हैं, तो फिर पुरुषार्थी की लाइन से भी धीरे धीरे वापस कई बार दुनिया में चले जाते हैं। तो हम देखते हैं शुरू से ही, जब से ओम मंडली बनी है, जब से इस यज्ञ की स्थापना हुई है, आदि काल से ही विघ्न आए हैं, ये यज्ञ का इतिहास रहा है। तो हमें बाबा को फॉलो करना है। कैसे ब्रह्मा बाबा ने, कैसे हमारी दादियों ने उन विघ्नों को पार किया और आज तक भी उस निश्चय में अटूट होकर अचल, अटल, अडोल स्थिति में चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि विघ्न दुनिया वालों के सामने नहीं आते हैं, बाबा के बच्चों के सामने ही आते हैं। ये सब परिस्थितियां दुनिया में लोगों के सामने आती हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि हम उसे पार कैसे करते हैं। बाबा ने वो हमें ज्ञान दिया है, वो शक्तियां दी हैं, वो गुण दिए हैं कि उस विधि से हम किसी भी परिस्थिति को स्वस्थिति से पार कर सकते हैं, अचल, अटल, अडोल, एक रस अवस्था में रह सकते हैं। और तभी हम पास विद ऑनर होते हैं, क्योंकि ये पढ़ाई भी है। पेपर देते हैं हम, जैसे कहते हैं कि पढ़ाई पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो पेपर देने के बाद ही क्लास आगे बढ़ता है। अगर पेपर नहीं देंगे तो क्लास आगे बढ़ेगा? ये पेपर ही हमें अनुभवी भी बनाते हैं। हमने ज्ञान की कितनी धारणा की है, कितनी शक्तियां हमारे अंदर आई हैं, उसकी परख भी विघ्नों के समय ही होती है। अब मानो धारणा में सबसे पहला खान पान का नियम, हाँ, सिंपल सी एक बाबा की धारणा है कि हमें शुद्ध भोजन ही करना है। किसी पतित के हाथों का बनाया हुआ भोजन, हाँ, या बाबा को भोग नहीं लगाया हुआ भोजन हमें स्वीकार नहीं करना है। अब हमारे घर वाले ज्ञान में नहीं चलते हैं तो वो निश्चित रूप से आपकी इस धारणा को नहीं मानेंगे या नहीं समझ पाएंगे। तो अब हमें यहाँ ये देखना है कि उनको हम कैसे समझा पाते हैं, और अगर नहीं समझा पाते तो फिर हमें उन्हें फोर्स भी नहीं करना है कि हम जो आप खाते हैं, नहीं खाते हैं, क्या करते हैं, उनको साक्षी होके देखना है। लेकिन मुझे जो बाबा ने धारणा दी है उस धारणा का मुझे पालन करना है। उसके कारण उनको ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए। कई बार हम उनको ये फीलिंग करा देते हैं कि हम तो श्रेष्ठ हैं, धारणा में आपसे शुद्ध भोजन करते हैं, तो उनको लगता है हम अछूत हैं क्या, हम पतित हैं क्या। अगर ये वाइब्रेशन जाएगा उनको तो वो विघ्न पैदा करेंगे। लेकिन अगर आप ये स्पष्ट करते हैं जैसा अन्न वैसा मन, ये बाबा ने समझाया है और इसीलिए हमें तमो प्रधान भोजन, लहसुन प्याज नॉन वेज हम नहीं खाएंगे, आपको खाना है तो भले आप। हमारा व्यवहार उन आत्माओं के प्रति परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो हमने खुद अनुभव किया है, क्योंकि हर एक ब्राह्मण इस पेपर को पास करता ही है जो भी बाबा के बच्चे बनते हैं। तो हम देखते हैं वो एक दो बार आपको जरूर टेस्ट कर लेंगे, उसके बाद वो समझ जाते हैं कि ये इनका नियम है। जैसे व्रत में किसी का नियम होता है कि व्रत है आज हम ये नहीं खाएंगे, तो कोई मजबूर नहीं करते हैं, उनको पता है इनका व्रत है ये नहीं खाएंगे, माना ठीक है, पूछ लिया, उतना हमारा फर्ज था। तो बाद में भी वो समझ जाते हैं ये इनके जीवन का व्रत है, नियम है, हाँ, वो अपना फर्ज निभा लेते हैं, पूछ लेते हैं आपसे आप नहीं खाते हैं, तो वो आपको कभी भी मजबूर नहीं करेंगे। लेकिन यदि हमारे ही मन की कमजोरी है, हाँ, हम सोचते हैं लोक लाज तो निभाना पड़ेगा, समाज को तो निभाना पड़ेगा, शादी ब्याह में तो जाना पड़ेगा, हाँ, तो खा लेते हैं, कभी कभी खा लेते हैं और दुनिया को निभाया। हाँ, बाबा कहते हैं, सोचते हैं हम इनको नाराज नहीं करें, तो मनुष्य आत्माओं को खुश किया जो सदा खुश रहने वाली है नहीं। आज एक बात में खुश किया तो दूसरी बात में कभी भी नाराज हो जाएंगे, और उसके लिए किसको, किसकी मर्यादा को तोड़ा, स्वयं भगवान ने जो हमें मर्यादा दी है, जो सारे कल्प में एक ही बार श्रीमत देते हैं, सारी जन्मों में तो हम परमत पर चलते रहे, अपनी मनमत पर चलते रहे, एक बार बाबा ने हमें श्रीमत दी है, उसकी मत को तोड़कर, उसकी मर्यादा को तोड़कर जो हमें अविनाशी प्राप्ति कराने वाली हैं। हम किसको खुश कर रहे हैं? जो खुश रहने वाले नहीं हैं। तो क्या करना चाहिए? तो कई बार अपने ही संस्कार, कई बार कमजोरी के संस्कार ही विघ्न रूप हमारे पुरुषार्थ में बन जाते हैं। ऐसे ही ब्रह्मचर्य की धारणा, मानो दोनों में से एक ज्ञान में नहीं चलता है तो फिर वहां विघ्न पैदा होता है, तो बंधन हो जाता है, वो कर्म बंधन के रूप में जाने ही नहीं देते हैं सेवा केंद्र पर। हाँ, उसके कारण फिर दूसरे दूसरे विघ्न, आपको मुरली नहीं सुनने देंगे, अमृत वेला नहीं उठने देंगे। उनको पता है कि अगर आप मुरली सुनते हैं तो आप में वो शक्ति होती है। तो फिर ऐसी स्थिति में भी मुझे अपनी धारणा को छोड़ना है, नहीं छोड़ना है। बाबा कहता है जो बांधेलियां होती हैं या जो बंधन में भाई हैं या बहने हैं, उनका योग सबसे तेज होता है। कई बार बाबा उसको मुरली में याद करते हैं और वो योग की लगन की अग्नि, हमारे पिछले जो भी कर्म के हिसाब किताब के कारण हम उस आत्मा के साथ हैं, उसको काटती हैं, खत्म करती हैं। और जरूर थोड़ा समय लगता है, लेकिन वो कर्म बंधन भी फिर समाप्त हो जाता है। यदि हम हिम्मत रखते हैं, हम दृढ़ता से बाबा के नियम पर अटल रहते हैं। ऐसे नहीं कि मुझे किसी को दुख नहीं देना है इसीलिए इस धारणा में भी मुझे दुख नहीं देना है, फिर मेरी मनमत के अनुसार बाबा की श्रीमत का हम उल्लंघन कर लेते हैं, तो हमारे पुरुषार्थ में वो सचमुच विघ्न हो जाता है। फिर हम वो प्राप्ति का अनुभव बाबा से नहीं कर पाते जो आत्मा को सचमुच होनी चाहिए। तो यहाँ भी ये जो विघ्न आते हैं, शुरू से आते रहे हैं। देखो, ओम मंडली के शुरू में सबसे ज्यादा जब भट्टी बनी तो कौन सी धारणा निमित्त बनी? पवित्रता की धारणा थी, जिसके कारण उस समय तो बाबा कहता है भट्टी बननी थी तो सब घर छोड़कर भाग लिए। अगर विघ्न कर पड़ते हैं तो नष्टो मोहा हम बहुत जल्दी बन जाते हैं। जिस पति से बहुत मोह होता है वो मोह छूट जाता है, या जिस पत्नी से बहुत मोह होता है वो ज्यादा विघ्न रूप बनते हैं, उत्पन्न करते हैं, हमें दुखी करते हैं, तो फिर नेचुरली वो मोह समाप्त होता है। तो उस समय भी वो मोह छूटा, भले छोटे बच्चे थे, वो छोटे बच्चों को भी साथ में लेकर बाबा के पास आ गए। तो बहुत लोगों ने कहा कि बाबा आप एक ये धारणा हटा दो, आपके सत्संग में बहुत लोग आएंगे, आपका ज्ञान इतना अच्छा है, हजारों लोग क्या लाखों लोग आकर के आपका सत्संग सुनेंगे, सिर्फ एक बात मत बोलो आप। तो बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा कि ये मैं सतयुग की स्थापना नहीं कर रहा हूँ, भगवान शिव बाबा जिसको नई सृष्टि की स्थापना करनी है ये वो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। उसे जिन आत्माओं को चुनना है, उसे पवित्र दुनिया के लिए पवित्र आत्माएं चाहिए। तो कभी भी अपनी धारणा से, हमें बाबा को देखना है, बाबा कभी भी अपनी धारणा से नहीं हटे, चाहे दुनिया की तरफ से कितने भी विघ्न उनके सामने आए। ब्राह्मण जीवन में जैसे आगे बढ़ते हैं और भी कई बातें आती रहती हैं जो हमारे पुरुषार्थ में विघ्न रूप बनती हैं। अगर हम उन बातों पर बहुत चिंतन करते हैं, जैसे कहा दुनिया वालों के सामने जो परिस्थितियां आती हैं वो हमारे सामने भी आती हैं, ये मर्यादाओं के कारण जो विघ्न आते हैं वो तो बाबा से जितनी हमारी लगन है उतना सहज हम उसे पार कर लेते हैं। ये हम सबका अपना अनुभव है। मुझे याद है जब हम बाबा से पहली बार मिले थे तो उस समय बाबा पर्सनल मिलते थे एक एक से, और वो टाइम ऐसा था जब मैं ये निर्णय लेना चाहती थी कि मुझे समर्पित होना है बाबा की सेवा में पूरी तरह से। और क्योंकि मैंने मेडिकल किया था तो निश्चित है कि हमारे घर वाले नहीं चाहते थे कि हम समर्पित हों, तो ये एक द्वंद थोड़ा सा होता ही है जब भी हम कोई ऐसा निर्णय लेते हैं। तो मैं बाबा के सामने इस संकल्प से आई थी, उस समय काफी मुझे नाराजगी झेलनी पड़ रही थी अपने परिवार वालों की तरफ से। तो बाबा के सामने इस संकल्प से कि बाबा मुझे क्या प्रेरणा देते हैं, तो बाबा ने उस समय, क्योंकि हम सामने मिलते थे बाबा को, तो बाबा हमें बोलते थे, बाबा अपने हाथ से टोली देते थे, वरदान देते थे। बहुत कम लोग होते थे उस समय बाबा से मिलने वाले, इतिहास की बात है ये। तब बाबा ने कहा कि जहां लगन है, हिम्मत है, वहां कोई विघ्न ठहर नहीं सकता। विघ्न ऐसे पार होते हैं जैसे मक्खन से बाल, मक्खन से बाल निकालने में कितनी मेहनत लगती है। तो बस वो बाबा ने कहा, और मैंने देखा कि जब मैं वापस लौट करके गई तो वहां से मेरी पोस्टिंग होने वाली थी, तो पोस्टिंग ही मेरी ऐसी जगह हुई जो घर से दूर स्थान था, तो अपने आप ही घर से दूर हो गए। और मैंने ये निर्णय लिया कि क्योंकि मुझे समर्पित ब्रह्मा कुमारी जीवन जीना है, तो मैं सेंटर पर ही रह करके इंटर्नशिप करूंगी, वो मेरी पढ़ाई के बाद जो एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, तो अपने आप ही सेंटर पर रहने का चांस मिल गया। अब उनको पता है कि जहां पोस्टिंग होगी वहां तो जाना ही पड़ेगा, तो घर वाले भी उसमें ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो बाबा अपने आप, यदि हम हिम्मत रखते हैं तो हम देखते हैं कि राह अपने आप निकलती जाती है, ऐसी बाबा की मदद हमें मिलती है। बाबा कहता है हिम्मत ए बच्चे मदद ए बाप। और उसके बाद अभी तो इंटर्नशिप पूरी नहीं हुई, यहाँ ग्लोबल हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट आ गया, तो ग्लोबल हॉस्पिटल ही बन रहा है यहाँ, तो अपने आप निमंत्रण मिल गया कि क्योंकि यहाँ डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की जरूरत थी। तो देखिए अपने आप बाबा ने वो रास्ता बना दिया, और कैसे जो सिर्फ एक संकल्प था उस समय, बाबा ने उसको साकार किया। तो किसी भी रूप में कोई भी विघ्न जब हमारे सामने आते हैं, तो बाबा कहता है बहुत संकल्पों में हमें नहीं जाना। हम सोचते हैं ऐसा क्यों हो गया, हम बाबा के बने, फिर भी ऐसा कई बार आश्चर्य होता है कुछ लोगों को, ऐसे विघ्न मेरे सामने आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, बाबा की मदद क्यों नहीं मिल रही है, या ऐसा इसने किया तो क्यों किया। कई तरह के प्रश्नों की क्यों में अगर हम चले जाते हैं तो हम राई को पहाड़ बनाते हैं, ज्यादा और विघ्नों का आह्वान करते हैं। जैसे कहा स्व स्थिति से परिस्थिति का निर्माण होता है, और हम स्व स्थिति से परिस्थिति को समाप्त भी कर सकते हैं। तो यदि हम फुल स्टॉप लगाते हैं बातों के विस्तार में जाने की बजाय, बाबा कहता है कल्याण का बिंदु लगा दो। अब फुल स्टॉप कैसे लगाएंगे, एक तो कुछ बात हुई तो वो बीत गई, सो बीत गई, वो बिंदु लगा दिया। हाँ, वो 5000 साल के बाद वापस आएगी, दोबारा वापस आने वाली नहीं है। कई बार जो हो गया उसको सोच सोच के ही हम अपने विघ्न खुद पैदा कर लेते हैं। व्यर्थ संकल्पों के इतना विस्तार होता है कि वर्तमान में हम पुरुषार्थ ही नहीं कर पाते हैं, बाबा से योग ही नहीं लगा पाते। किसी ने मुझे कोई अपमान की दो बातें कह दी, मानो इतनी फीलिंग होती है उसकी कि घंटों तो क्या दिनों तक दिमाग पर असर रहता है और पूरा पुरुषार्थ खत्म। तो वो विघ्न रूप बन गया ना हमारे लिए। तो यहाँ फुल स्टॉप कैसे लगाएंगे, बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया है, तीनों कालों का ज्ञान दिया है, तो पता है कि ये मेरे सामने क्यों आया। जरूर मैंने कभी उस आत्मा का अपमान किया होगा, भले ही अभी नहीं, कभी पहले पूर्व जन्म में किया होगा, तो वो अपना हिसाब पूरा कर रही है। तो कोई कर्ज पूरा हुआ तो खुशी होती है, या संकल्प चलते हैं, खुशी होती है ना कि पुराना कर्ज था खत्म हो गया। अगर अब मैं शुभ भावना रखती हूँ उस आत्मा के प्रति, तो फिर वो हमेशा के लिए कर्म बंधन खत्म हो जाता है। लेकिन अगर मैंने संकल्प चलाए तो 1 का 100 गुना मैंने जोड़ लिया। हमको अभी कर्मातीत बनना है, कर्मातीत बनकर के बाबा के साथ घर वापस जाना है, तो उस हिसाब किताब की गति को भी हमें अपने मन में रखना है, तब हम फुल स्टॉप लगा पाएंगे। दूसरा बाबा कहता है हर बात में कल्याण है, ड्रामा में जो हुआ वो कल्याणकारी है, भले ही वर्तमान में मुझे कई बार नहीं समझ में आ रहा है लेकिन उसमें कल्याण है ही। जो बाबा ने कहा है माना है ही कल्याण। अब मानो किसी को लगता है मेरे पति की मृत्यु हो गई या मेरे जवान बेटे की मृत्यु हो गई, इसमें क्या कल्याण है? कई ऐसे केसेस आते हैं हमारे सामने जो बात करते हैं। अभी ही पीछे कॉन्फ्रेंस थी, तब एक माता आई मेरे पास और कहा मेरा 18 साल का बेटा, उसका एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु, ज्ञान में नहीं चलती थी वो उस समय, हो जाते हैं आजकल तो अकाले मृत्यु का समय है, किसी की भी किसी भी समय मृत्यु हो जाती है। तो वो बेटा था, एक ही बेटा था, तो माँ का दिल तो कैसा होता है अपने बच्चों के लिए, कोई दिन ऐसा नहीं रोए नहीं, उदास मना उदासी तो जैसे वो डिप्रेशन में चली गई, दवाइयां खानी पड़ रही थी उसको डिप्रेशन के लिए, डॉक्टर्स को दिखाना पड़ता था। फिर उसको किसी ने बताया कि आप ब्रह्म कुमारी के यहाँ जाओ, तो वो आई यहाँ, ज्ञान सुना उसने, कहती है कि 7 दिन का ज्ञान सुना और उसके बाद मेरा रोना अपने आप बंद हो गया, बाबा से योग लगा और इतनी शक्ति मिली है मुझे कि मैं कह नहीं सकती हूँ, मेरी दवाइयां भी छूट गई। अभी 6 महीने हुए थे उसे ज्ञान में चलते, वो यहाँ मधुबन में आई, तो कैसे शक्ति मिली, इतनी बड़ी परिस्थिति उनके सामने आई, लेकिन बाबा से योग लगाने से, बाबा का ज्ञान सुनने से वो आत्मा में शक्ति भरी कि वो ऐसे विघ्न को अपने जीवन से पार कर पाए। तो वो कहती है कि मैं उस आत्मा के लिए अभी थैंक्स मानती हूँ कि वो आत्मा गई तो मेरे को बाबा का ज्ञान मिला, अगर वो आत्मा नहीं जाती तो मैं कभी भी ज्ञान में नहीं आती, तो मेरे लिए अविनाशी प्राप्ति का मार्ग खुल गया और दूसरा मुझे भगवान बेटे के रूप में मिल गया, भले मेरा बेटा गया लेकिन भगवान अब मेरा बेटा है, तो परिवर्तन हुआ। ऐसे हम एक कहानी सुनते हैं कई बार जब लोगों को हम सुनाते हैं, तब एक शास्त्रों में आती है ये कथा कि कैसे देखने में लगता है बुरा हो रहा है लेकिन उसमें कल्याण है। कि एक बार एक राजा का एक अच्छा वाइस मिनिस्टर था और वो हमेशा अपने मंत्री को अपने साथ रखता था, तो एक बार राजा की उंगली कट गई, तो उसने अपने मंत्री को दिखाया, मंत्री जी मेरी उंगली कट गई, उसने कहा महाराज जो हुआ वो अच्छा हुआ, तो राजा को गुस्सा आया कि उंगली कट गई है अच्छा कैसे हुआ है, तो उसने गुस्से में आकर के उसको जेल में बंद करवा दिया। अब राजा को शिकार खेलने का शौक था और वो शिकार खेलते खेलते जंगल में दूर चला जाता है और वहां पर कबीले के लोग रहते थे, तो वो उसको पकड़ लेते हैं। उस दिन उनका देवी को बलि चढ़ाने का दिन था, नर बलि चढ़ानी थी, उसको सारी बात समझ में आती है, तो वो उनको समझाने की कोशिश करता है, मैं आपका राजा हूँ आप मेरी बलि चढ़ाओगे, तो कहते हैं राजा तो सर्वोत्तम होता है, राजा की बलि पाके तो हमारी देवी बहुत खुश होगी, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। और वो उसको ले जाते हैं अपने पुजारी के पास, फिर पुजारी देखता है तो देखता है उसकी उंगली कटी हुई है, क्योंकि बलि का भी नियम होता है उसका कोई अंग भंग नहीं होना चाहिए, संपूर्ण बलि होनी चाहिए। अब राजा की उंगली कटी हुई थी तो उसने रिजेक्ट कर दिया, उसने कहा ये बलि तो देवी स्वीकार नहीं करेगी, आप इसको छोड़ दो कोई दूसरा मनुष्य ढूंढो। राजा छूट जाता है और जब वो लौट रहा होता है तो अब उसे मंत्री की बात याद आती है, जो हुआ वो अच्छा हुआ, उसने सोचा सचमुच आज उंगली कटी हुई थी इसीलिए बलि नहीं चढ़ी, हाँ नहीं तो कोई बचाने वाला नहीं था, बलि चढ़ जाती। अब जब वो अपने राज्य में पहुंचता है तो वहां पर वो पहले सीधा मंत्री के पास जाता है और कहता है मंत्री जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपकी बात आज समझ में आ गई, पर एक सवाल है मेरे मन में, मैंने आपको जेल में बंद किया ये तो आपके साथ बुरा ही हुआ। तो मंत्री कहता है कि नहीं महाराज ये भी अच्छा हुआ, अगर मैं जेल से बाहर होता तो मैं हमेशा आपके साथ जाता हूँ, और मैं आपके साथ जाता तो मैं तो संपूर्ण मनुष्य था, आपकी बजाय मेरी बलि चढ़ जाती तो हम तो दोनों ही बच गए। तो देखने में घटना कैसी थी, दोनों के लिए बहुत बुरी थी, लेकिन कल्याण भविष्य के पर्दे में था, उस समय नहीं समझ में आया। तो कई बार ड्रामा की जो सीन हमारे सामने आती है वो वर्तमान, हम एक कालदर्शी है ना, एक ही काल को देख पाते हैं। त्रिकालदर्शी बाबा ने हमें बनाया है और इसीलिए बाबा कहते हैं हर सीन में कल्याण है। तो अगर हम उसको तीनों कालों से देखेंगे तो फिर हमें समझ में आ जाएगा कि भविष्य के पर्दे में इस बात ने मेरा क्या कल्याण छुपा हुआ है। अब जैसे जवान बेटे की मौत हुई, देखने में तो कितनी बुरी सीन है, लेकिन उसमें भविष्य में कल्याण क्या था, उसने उसको भगवान के पास लाया, डायरेक्ट भगवान का ज्ञान उसे प्राप्त हुआ। तो कोई भी घटना में हमें समझ में आ जाता है कि इसमें मेरा ये कल्याण था। बाबा कहता है नहीं तो वो हमें अनुभवी बनाती है और अनुभवी सबसे श्रेष्ठ होता है। कई बार हमारे अंदर जो छिपी हुई शक्तियां हैं, गुण हैं, वो उसी समय इमर्ज होते हैं जब परिस्थितियां आती हैं। भले ही हम सुनते रहते हैं लेकिन यूज नहीं करते हैं उनको, लेकिन जब ऐसे विघ्न आते हैं तब हम उन्हें यूज करते हैं, तब हमें पता चलता है कि बाबा का साथ, बाबा की शक्तियां क्या कार्य करती हैं। ऐसे हम सबको अपने जीवन में अनुभव है। तो इस तरह से जो भी पेपर आते हैं उसमें हमें फुल स्टॉप लगाना है। और दूसरी बात बाबा कहता है, परिस्थिति से ऊंचे चले जाओ। जैसे एरोप्लेन उड़ता है तो फिर नीचे पहाड़ आते हैं, नदियां आती हैं, कैसे भी विघ्न होंगे उसके लिए उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो मन को उड़ती कला में ले जाना, माना एक सेकंड में अशरीरी हो जाना फरिश्ता स्थिति में। फरिश्ता क्या करता है, उड़ता है ना, फरिश्ते को उड़ता हुआ दिखाते हैं। तो यदि हम तुरंत बिंदु रूप स्थिति में या फरिश्ता स्थिति में मन को स्थित कर लेते हैं तो फिर परिस्थितियों का प्रभाव वो नीचे रह जाता है। मन ऊंची स्थिति में जाते ही विघ्नों के प्रभाव से हम दूर हो जाते हैं और सीधा बाबा से भी कनेक्शन होता है। उस कनेक्शन से, उस रिलेशन से अपने आप शक्ति मिल जाती है, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति का हम अनुभव करते हैं। तो जो बात मेरे कंट्रोल में नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि कोई बातों में हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि अभी हम क्या करें, तब हम बाबा के सामने बैठें और अपने मन को तुरंत अशरीरी स्थिति में स्थित कर दें, बाबा के पास जाकर के बैठ जाएं। आप देखेंगे अपने आप कैसे वो विघ्न पार हो जाता है। कम से कम हमारी मन की स्थिति तो हलचल में नहीं रहेगी, हम अचल स्थिति में, अडोल स्थिति में स्थित हो जाएंगे, उस पेपर को हम सहज पार कर लेंगे। बाबा हमसे यही चाहता है, ऐसे नहीं हिलाने वाली परिस्थितियां नहीं आएंगी। वो तो लास्ट में भी बाबा कहता है, जो लास्ट पेपर आने वाला है ना, उस समय तो चारों तरफ की स्थितियां ऐसी होंगी जो हिलाएंगी, माया भी हिलाएगी, प्रकृति भी हिलाएगी, स्वयं के पुराने संस्कार भी हिलाएंगे, जो भी थोड़ा बहुत अंश वंश अंदर रहा हुआ है वो सब खत्म होना है, कर्मातीत बनना है ना, तो हर चीज समाप्त होनी है। तो हर चीज अपना लास्ट वार करेगी। एवर रेडी रहने का मतलब बाबा यही कहता है कि इन सब बातों के लिए तैयार रहना है। अचानक कोई भी बात मेरे सामने आए तो क्या वो मुझे प्रभावित करती है, क्या हम उसके वश हो जाते हैं, या हम माया जीत, प्रकृति जीत, जगत जीत, बन एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्थिति में स्थित होकर पास विद ऑनर हो सकते हैं। ये अभी से अपनी चेकिंग करनी है। बहुत काल का पुरुषार्थ अगर हमारा है तो बाबा कहता है वो जो अंतिम हाहाकार का समय होगा, सारी दुनिया के लिए तो हाहाकार का समय होगा और हम बाबा के बच्चों के लिए जय जयकार का समय होगा, जिसको बाबा कहता है मिरुआ मौत मलू का शिकार। लेकिन कब ऐसी स्थिति होगी, कब ऐसी स्थिति होगी, जब बहुत काल से हमने विघ्न जीत, जो कहा विघ्न विनाशक स्थिति का अनुभव किया है, तो उस समय भी इन पेपर में हम पास हो जाएंगे। अब माया जीत माना, मेरे खुद के ही संस्कार विघ्न बनते हैं, मानो काम विकार क्रोध आ जाता है, लोभ का अभी भी अंश वंश है, मोह है अभी भी, लास्ट का पेपर ही है नष्टो मोह स्मृति लब्धा। कहां भी मोह है वो मन को खींच के ले जा सकता है तुरंत, और अहंकार, अब अहंकार मैंपन मेरापन किसी भी रूप में है, तो इसका मतलब हम अभी तक भी माया जीत नहीं बने हैं। प्रकृति जीत, बाबा कहता है जो प्रकृति के साधन सुविधाएं हैं ये अंत में हमें ना मिले तो वो मेरी साधना को क्या प्रभावित करते हैं, साधनों के आधार पर मेरी साधना है या अगर कोई चीज ऊपर नीचे हो जाए। कई बार खाने की चीज के लिए बाबा कहते हैं, अगर मानो चाय पीने की आदत है और चाय नहीं मिली तो क्या मेरी स्थिति डगमग होती है, अंत में तो ऐसे होगा कि शायद पानी भी ना मिले पीने को, खाने को नहीं मिलेगा। बाबा ने एक बार कहा कि जैसे आदि में साक्षात्कार हुए, जब पार्टीशन हुआ उस समय बाबा कैसे बच्चों को बहलाते थे, तो अलग अलग तरह के साक्षात्कार स्वर्ग के होते थे और उस खुशी में जैसे भूख लगती ही नहीं थी। तो आदि सो अंत होना है, अंत में भी ऐसा ही होने वाला है कि योग में रहेंगे तो फिर भूख प्यास के उससे अनुभव से ऊपर होंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ये चीजें भी हमें हलचल में ला सकती हैं। तो अभी से अपने ना प्रकृति पर जो हमारी अधीनता है उसको भी अभी से चेक करना है कि वो लास्ट में कहीं हमें उस पेपर में फेल ना कर दे। कई बार तंत्र मंत्र की बातें भी करते हैं लोग, ये विघ्न भी आज के समय में क्योंकि तमो प्रधान समय है तो लोग किसी का हमको तो बाबा सिखाता है हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना रखनी है, लेकिन दुनिया में लोग बदला लेने की भावना भी रखते हैं या बुरी भावनाएं दुर्भावनाएं भी रखते हैं और उसके कारण कई बार वो इस तरह के प्रयोग करते हैं। तो कई बार ब्राह्मण आत्माएं भी ये सवाल पूछती हैं कि अगर कोई ऐसा करता है तो फिर इस विघ्न से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। कोई कोई आत्माएं इस प्रभाव को अनुभव करती हैं, लेकिन अगर हम कमजोर हैं, क्योंकि ये आत्माओं का प्रभाव है परमात्मा का प्रभाव नहीं है, अगर वो कोई तंत्र मंत्र करते भी हैं तो वो आत्मा की शक्ति है और नेगेटिव शक्तियां कभी भी पावरफुल नहीं होती। हमें बाबा पर अगर पूरा निश्चय है और बाबा के साथ हमारा पूरा कनेक्शन है, लाइन क्लियर है, तो हम उसके बारे में बिल्कुल सोचे ही नहीं, निश्चिंत रहें, वो शक्तियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी, उनका कोई असर नहीं हो सकता। लेकिन हम अगर उसको बार बार सोचते हैं तो हम आह्वान कर रहे हैं और आह्वान करेंगे तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। कई बार बाबा में संशय होता है, जहां संशय आया ना बाबा में संशय होकर के ऐसी बातों में हम ज्यादा चले जाते हैं तो फिर प्रभाव पड़ जाता है। तो अंत समय में ये भी इविल सोल इफेक्ट जिसको बाबा कहता है, क्योंकि अकाले मृत्यु का समय है तो एक साथ बहुत सारी आत्माएं शरीर छोड़ेंगी और उनके इस तरह के जो वाइब्रेशंस हैं उसका भी प्रभाव भारी होगा वो वातावरण। तो अगर हम कमजोर होंगे तो वो प्रभाव पड़ जाएगा, इसीलिए बाबा अभी से मनसा सेवा की बात कहते हैं। अपनी मनसा को पावरफुल बना करके अपने स्थान पर जहां हम रहते हैं और अपने सेंटर के वायुमंडल को हमें बहुत पावरफुल बना करके रखना है ताकि ऐसी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव न हम पर हो और ना ही हमारे सेंटर के वायुमंडल पर उसका कोई प्रभाव आए। तो और उसके साथ साथ जो हमारा निश्चय स्वयं पर होना चाहिए, कई बार हम दिल शिकस्त हो जाते हैं, हम पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, ऐसा होगा कि नहीं होगा, हम तो बहुत पीछे आए हैं ड्रामा में, मेरा तो कोई ज्यादा पार्ट दिखाई नहीं देता है, या जो बाबा की दिनचर्या है उस प्रमाण में नहीं चल पा रही हूँ, अमृत वेला तो मेरा ठीक होता नहीं है, मैं रोज, कई बातें हो सकती हैं। जो स्वयं में निश्चय होना चाहिए उसकी बजाय स्वयं में संशय आ जाता है। तो बाबा कहता है ये भूल जाते हैं मैं कौन हूँ, बाबा ने मुझे क्या बनाया है, और फिर ये पुराने संस्कारों की बातें हैं, अपने आप से दिल शिकस्त होना, निराश होना, कमजोर समझना, ये कौन सी बातें हैं, पुराने संस्कारों से हम लाए। लेकिन बाबा ने मुझे याद दिलाया है मैं वो ही कल्प पहले वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, कितने टाइटल्स हैं हमारे, तो उन टाइटल्स को स्मृति में लाना है। रोज अमृत वेले अपना एक टाइटल याद रखना है और फिर अपनी मनन शक्ति को बढ़ाना है। जितना हम अपनी मनन शक्ति को बढ़ाएंगे उतना हमारी दिव्य बुद्धि शक्तिशाली होगी, और ऐसी कमजोर करने वाले जो व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं वो संकल्प अपने आप निकल जाएंगे। तो अपने मनन चिंतन को बढ़ाने के लिए, और ये मनन चिंतन जो है वो हमें हमारे लिए ज्ञान के अस्त्र शस्त्र भी हैं, जैसे अस्त्र शस्त्र सैनिक यूज करते हैं तो उससे विजय प्राप्त करते हैं, देवियों के हाथों में अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं, तो बाबा ने कहा ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्र ही हमें मायाजीत बनाने वाले हैं। तो अगर हमने इनका अभ्यास किया है, मनन करना माना ज्ञान का अभ्यास करना, ज्ञान को अपना बनाना, जब तक भोजन पचाया नहीं है तब तक वो शक्ति नहीं बनता है, ऐसे ही ज्ञान को भी जब तक मनन करके अपना नहीं बनाया है, आपको पता है ड्रामा की पॉइंट यूज करेंगे, फुल स्टॉप लगाना है, ड्रामा भी कह रहे हैं, जो ड्रामा में था वो हुआ, लेकिन फिर भी मन भी हलचल में आ रहा है तो ड्रामा का फुल स्टॉप तो नहीं लगा, वहां सोचते हैं मैं आत्मा शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, दूसरे को भी आत्मिक दृष्टि से देखना, ये हमें विकार पर विजय दिलाता है, लेकिन जब देह अभिमान का वार होता है तब वो मेरी पॉइंट काम ही नहीं कर रही है, तो फिर ज्ञान का शस्त्र मेरे पास है लेकिन काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जैसे सैनिक रोज अभ्यास करते हैं तब समय पर उनका निशाना लगता है, तब वो निशाना लगाने में कुशल हो पाते हैं, अगर वो रोज अपने शस्त्रों का अभ्यास नहीं करेंगे ना तो वो शस्त्रों में भी जंग लग जाएगा, और समय पर वो शस्त्र निशाना लगाएंगे। ऐसे ही अगर मैंने रोज बाबा की बातों को चिंतन नहीं किया है, रोज बाबा की बातों को यूज नहीं किया है, तो वो भले मेरे पास हैं लेकिन समय पर काम में नहीं आएंगे और हम फेल हो जाएंगे, विघ्नों पर विजय प्राप्त करने की बजाय फेल होने की मार्जिन ज्यादा होगी। तो इसीलिए बाबा कहता है विघ्न जीत बनना है तो मनन शक्ति को बढ़ाओ। फिर कई भाई बहने कहते हैं मनन तो चलता ही नहीं है ना, मनन कैसे करें, इतना बिजी रहते हैं सारे दिन के कारोबार में कि मनन करने की फुर्सत ही नहीं है, पहली बात तो समय निकालना है, समय मिलेगा नहीं। एक मुरली में बाबा ने कहा था 5 मिनट भी मिलता है, मानो हमेशा इतना बिजी तो नहीं होते हैं कि हमें 5 मिनट भी नहीं मिलता है, तो भी तुरंत बाबा ने जो कहा वो स्मृति में लाओ। तो कौन कौन सी बातें स्मृति में लाओ, जो बाबा से हमें प्राप्तियां हुई हैं, क्या क्या खजाने बाबा हमें दे रहे हैं। दूसरी बात, बहुत नशे की पॉइंट्स बाबा हमें रोज मुरली में देते हैं, वो नशे की पॉइंट्स नोट करो। खुशी की पॉइंट्स, जो हमें खुशी देने वाली पॉइंट्स हैं उन्हें स्मृति में लाओ। जो रचयिता और रचना के विस्तार की बातें, 84 जन्मों की कहानी बाबा ने सुनाई है, हम ही देवी देवता थे, हम ही डबल ताजधारी थे, हम ही पूज्य आत्माएं हैं, हम ही फरिश्ता सो देवता बनने वाले हैं, तो वो सारा जो विस्तार बाबा ने हमें समझाया है उसे आप चिंतन में लाओ। एक बार बाबा ने कहा था 5 स्वरूपों का अभ्यास मुझे रोज करना है, और एक बार नहीं, हर घंटे में कम से कम एक बार। तो अगर हम वो 5 स्वरूपों का अनुभव करेंगे तो स्थिति कैसी होगी, जैसी स्मृति वैसी स्थिति समर्थ ही आ जाएगी, क्योंकि देवात्मा कमजोर हो सकती है क्या? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मैं देवात्मा रही हूँ, ये स्मृति आते ही वो समर्थी मेरे अंदर आ जाएगी। तो जैसी स्मृति वैसी स्थिति बनती है, इसीलिए ज्ञान का मनन चिंतन वो स्मृति को समर्थ बनाता है। व्यर्थ संकल्प अपने आप छूट जाएंगे, नहीं तो छोटी छोटी बातों को लेकर इतने व्यर्थ संकल्प कई बार मन में चलते हैं। क्यों मार्जिन मिलती है व्यर्थ संकल्प आने की? क्योंकि ज्ञान का मनन चिंतन नहीं है, ज्ञान की स्मृति नहीं है। हम अलौकिक स्मृतियों में कम रहते हैं, लौकिक स्मृतियों में ज्यादा रहते हैं। पर चिंतन पर दर्शन में बहुत जल्दी, क्योंकि मन में कोई चिंतन तो चलेगा, अगर ज्ञान का चिंतन नहीं चलेगा तो क्या चलेगा? पर चिंतन चलना शुरू हो जाएगा, इसने ये किया उसने ये किया। जैसे ही कई बार दूसरों के साथ जो हमारा संस्कारों का टकराव होता है वो भी विघ्न रूप बन जाता है। फिर जैसे ही फुर्सत में आते हैं वही बातें मन में चलने लगती हैं। तो यहाँ भी बाबा हमें कहता है, कभी भी जब हम ब्राह्मण परिवार में संबंध संपर्क में आते हैं, सेवा में आते हैं, हमें दूसरों की कमियों को नहीं देखना है, उनके अवगुण नहीं देखने। हम सब यहाँ अपनी कमियां छोड़ने आए हैं, अपने अवगुणों को समाप्त करने आए हैं। तो जैसे बाबा ने विशेषता से गुणों से अपना बनाया है, ऐसे हर आत्मा में गुण भी हैं, मुझे भी उस आत्मा के गुण देखने हैं। और अगर मानो कोई किसी की बात सुनाता भी है, कभी ऐसे होता है ना दूसरों की बातें सुनाते हैं, तो फिर हमें उसमें हाँ हाँ नहीं करना है, हम फिर कई बार उन बातों को बढ़ाते हैं, लेकिन सुनते हुए उनकी कोई और विशेषता सुना दो। जैसे बाबा कहते हैं टेका मत दो उनको, लेकिन इस आत्मा में ये विशेषता भी है, आप देख रहे हैं ये कमी है, लेकिन एक्चुअली इसमें ये विशेषता भी है। तो हमने क्या किया, उसको कमजोरी को हमने समर्थ बना दिया, तो संगठन कमजोर नहीं होगा। नहीं तो अगर ऐसी बातें भी फैलती हैं, ऐसे होता है ना, एक ने एक को सुनाया, फिर उसने उसको सुनाया, फिर उसने उसको सुनाया, पूरे वातावरण में वो फैलता है और वातावरण कमजोर होता है, सेंटर का वायुमंडल कमजोर होता है, या हमारे पुरुषार्थ पर भी उसका असर आता है। तीव्र पुरुषार्थी से हम साधारण पुरुषार्थी होने लगते हैं, क्योंकि मन में वो पर चिंतन पर दर्शन का प्रभाव ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे जो भी विघ्न आते हैं हमारे पुरुषार्थ में, बाबा जैसे हमें चाहते हैं, हम बाबा को फॉलो करते हुए ब्रह्मा बाबा ने जैसे किया उसी तरह से अपने पुरुषार्थ को करते हुए बाबा की याद में जितना हम रहते हैं और जितना ज्ञान के स्मरण में रहते हैं, उतना बाबा की हमें मदद मिलती है और सहज ही विघ्नों से पार हम बेफिक्र बादशाह खुशी का जीवन, ब्राह्मण जीवन में जो मौजों का जीवन, अतिंद्रिय सुख का जीवन अनुभव होना चाहिए, वो हम कर पाते हैं। ओम शांति।